نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين سورة الفاتحة فتح فتح اوپنر الفاتحة کہتے ہیں اوپنر کو فتح کہتے ہیں کھولنے کو فتح سے یہ لفظ بنا الفاتحة یہ اگرچہ قرآن پاک کی بہت مختصر صورتوں میں سے ہے اس کی پوری کل آیات کی تعداد آپ دیکھ لیں سات ہے لیکن قرآن پاک کی عظیم ترین صورت ہے اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ام القرآن ام القرآن کس لیے کہا گیا ام کہتے ہیں نا ماں کو تو کسی کی بھی جڑ کسی چیز کی تو اس لحاظ سے یہ ام القرآن ہے قرآن پاک کی جڑ ہے یعنی سارے قرآن کا خلاصہ اس کے اندر سمجھنے اس سورت کے اندر ہے اس کے بہت سارے نام ہیں جیسے الفاتحہ تو اس کا نام ہے ہی فاتحۃ الکتاب کیونکہ قرآن پاک کا افتتاح اسی سورت سے ہوتا ہے تعلیم کی ابتدا اس سورت سے ہوتی ہے نماز میں قرات کا بھی افتتاح اس سورت سے ہوتا ہے اور دیکھیں الفاتحہ ہے کھولنے والی ہے تو ہم بھی دعا کریں یا اللہ اس الفاتحہ کو کھولنے والی کو یا اللہ ہماری زندگیوں میں بھی ایک ایسا باب کھولنے والی بنا دینا جو صراط مستقیم کی طرف جاتا ہو ہم اس دروازے سے گزر کے ایسی منزل کی طرف جانے والے ہیں جو جنت ہے یہ صراط مستقیم ہمیں لے کے جائے گا نا تو فاتحہ واقعی ہماری زندگی کا کو بھی کبھی نئی زندگی کا افتتاح کرنے والی بن جائے نئی زندگی کا دروازہ کھولنے والی بن جائے نیا انسان ہمیں بنانے کی طرف کا راستہ کھولنے والی بن جائے پھر اسی طرح عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ جس چیز سے محبت کرتے تھے نا اس کے کافی سارے نام رکھ لیتے تھے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا فاتحہ تو اس کا نام ہے ہی اسی طرح ام القرآن اس کا نام ہے پھر اسی طرح ام الکتاب اور سبا مسانی اس کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے اور سبا مسانی ہے سبا مسانی کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الحجر آیت 87 میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي ہم نے آپ کو سات آیتیں دی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں دہرائی جانے والی سات آیات ہم نے آپ کو عطا کی ہیں اور یہ سات آیات کون سی ہیں یہ سورۃ الفاتحہ اس میں سات ہی آیات ہیں نا تو سبع مثانی بھی اس کا نام ہو گیا سورۃ الحمد بھی اس کا نام ہو گیا اس کا نام سورۃ الحمد اس طرح سے ہے کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے تو اسی طرح اس کا نام الوافیہ بھی ہے وافیہ وفاد سے جیسے لکھتے نا واو الف وا یا ہا کیونکہ صرف اس سورت کو نماز میں آدھا کر کے نہیں پڑھا جا سکتا ٹھیک ہے اور یہ پوری ہے یہ کفایت کرتی ہے یہ کافی ہے کافی ہونے والی اسی لیے اس کو الکافیہ بھی فرمایا گیا کیونکہ اس کے بدلے میں کوئی اور سورت نہیں پڑھ سکتے نماز میں इसको अशिफा भी फरमाया गया, क्योंकि ये हर बीमारी की शिफा है, चाहे जिस्मानी अमराज हो, रूहानी अमराज हो, कोई दिल की बीमारी है या जिस्मानी बीमारी ना, हर किस्म की बीमारी में शिफा है। कभी आप इसको आजमा के देखिएगा। फिर इसको सूरत उस सलात भी कहा गया, क्योंकि ये सलात में पढ़ी जाती है ना, नमाज में। इसको सूरत दुआ भी फरमाया गया, क्योंकि ये दुआ है, इसमें अल्लाह ताला की हमद बयान करके उसके बाद दुआ की गई है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, इस लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत सारे इसके ये नाम, मगर जो नाम सबसे ज्यादा मशहूर है वो जाहिर है यही है सूरतुल फातिहा। इसकी फजीलत क्या है, फजीलत को देख लेते हैं। अब आपने देखें, पहले इसका नाम लिख लिए कि इसके ये नाम है। आप इसके फजाइल सूरह फातिहा लिखें, हेडिंग दें, और उसके बाद फिर इसके फजाइल लिखें आप, ताकि हर चीज़ अलग अलग हो। ये नहीं हो कि सारा आप नोट्स ऐसे बिचमिच हो जाएं कि फिर उसके बाद समझ ही ना आए कि क्या लिखा था। आपके नोट्स बहुत नीट होने चाहिए, और अलग से जैसे हर चीज़ का लेबल हो, हाईलाइट किया जाए, हाईलाइटर आपके पास होने चाहिए, और खुला खुला करके अलग अलग करके अपने नोट्स बनाइएगा। तो सूरह फातिहा के फजाइल क्या हैं? एक तो ये इतनी बड़ी इसकी फजीलत है ना, जो मुस्लिम में आई है ये हदीस, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा जिब्राईल अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे कि ऊपर से एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ऊपर देख के फरमाया, आज आसमान का वो दरवाज़ा खुला है जो कभी नहीं खुला था। फिर वहाँ से एक फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, खुश हो जाइए, दो नूर आपको ऐसे दिए गए हैं कि आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए, आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। वो है सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी आयतें, कि एक एक हर्फ पे नूर है, एक एक हर्फ पे सुभान अल्लाह। यानी इस सूरत का एक एक लफ्ज नूर है, और ये स्पेशल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई। फिर एक और हदीस में, तिर्मिजी में ये हदीस है, अबू हुरैरा से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई बिन काब, जो कारी कुरान थे, अंसारी सहाबी थे, और कारी उस जमाने में वो होता था जो आलिम भी होता था कुरान का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई बिन काब से फरमाया, ए उबई, क्या मैं तुम्हें वो सूरत ना बताऊं जिसकी मिसल ना तौरात में है, ना इंजील में है, ना जबूर में, और ना कुरान में है। यानी इस जैसी कुरान में भी कोई और सूरत नहीं, इतनी अजमत वाली सूरत है ये। तो हजरत उबई ने फरमाया, हाँ या रसूलल्लाह, जरूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा सुनाओ, नमाज कैसे पढ़ते हो? तो उन्होंने सूरह फातिहा को पढ़ा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस हस्ती की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस सूरत के जैसी ना तौरात में है, ना इंजील में है, ना जबूर में, यही सबा मिनल मतानी है, यही कुरान अदीम अजमत वाला कुरान है जो मुझे अता किया गया। तो ये ऐसी सूरत है कि सोचें, इसके बगैर नमाज नहीं होती, इसके बगैर नमाज नहीं होती, यानी ये नमाज में पढ़नी लाजिम है। ला सलाता लिमन ला यकरा बिफातिहतिल किताब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी नमाज नहीं जो नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता, वो रकत ही नहीं शुमार होती। तो आप बाजमात पढ़ रहे हो, तब भी आप इमाम के साथ साथ सूरह फातिहा पढ़ें, या इमाम हर रकत के बाद उनको वक्फा देना चाहिए कि जब वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहें तो उसके बाद इतना वक्फा हो कि मुक्तदी भी कह सके। अगर नहीं तो फिर पूरी सूरह फातिहा पढ़ के, आपने देखा होगा कि मस्जिद नबवी वगैरह में अगर आप गए हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि वो उसके बाद कुछ देर खामोश हो जाते हैं, तो वो खामोशी एक वक्फा है ताकि मुक्तदी भी अब सूरह फातिहा पढ़ लें। ठीक है, तो इसके बगैर नमाज नहीं है, ये भी इसकी एक फजीलत है। अच्छा, फिर ये एक वाहिद सूरत ऐसी है सुभान अल्लाह कि इसके ऊपर अल्लाह ताला जवाब देते हैं, हर आयत पे जवाब आता है अल्लाह ताला की तरफ से। यानी जब जब आप इस सूरत को पढ़ते हैं और वाकई ध्यान से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो बेतवज्जो ही से दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल नहीं करते। ये सूरह फातिहा एक दुआ है और अल्लाह ताला इसकी हर आयत पे जवाब देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें बताया है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा कर दिया, निस निस कर दिया। मेरा बंदा मुझसे जो मांगता है वो मैं देता हूँ। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो पता है अल्लाह ताला जवाब देते हैं। अल्लाह ताला क्या जवाब देते हैं? हमदनी आबदी, मेरे बंदे ने मेरी हमद बयान की। फिर बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह ताला फरमाते हैं अथनी आला अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। फिर बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला जवाब देते हैं मजदनी आबदी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। सुभान अल्लाह। तो फिर बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये है मेरे और मेरे बंदे के दरमियान, और मेरा बंदा मुझसे अब जो मांगेगा मैं दूंगा। फिर बंदा आगे ए दिन सिरात से लेके आखिर तक पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उस पे भी जवाब देते हैं ये सब मेरे बंदे के लिए और ये जो मांगेगा वो उसके लिए। यानी अब इसने हिदायत मांगी तो मैंने इसको दे दी, तो हमें क्यों नहीं मिलती फिर? क्योंकि हम कितनी बेतवज्जही से ये सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो हमें कैसे जवाब आए अल्लाह की तरफ से और कैसे फिर हमारी ये दुआ कबूल हो? तो ये एक सूरत ऐसी है जब जब आप इसको पढ़ते हैं तो तब तब अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, अल्लाह ताला जवाब देते हैं। कितनी बड़ी फजीलत है इस सूरत की। तो महसूस किया करें, जब आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो दिल से कहें, क्योंकि अल्लाह ताला फिर ही जवाब देंगे ना, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की, हम्द की। फिर अगली इसकी फजीलत यह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम बिस्तर पर लेटो और सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ लो तो मौत के सिवा हर चीज से अमन में आ जाओगे। ये भी हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक सूरह फातिहा की फजीलत, इसके फजाइल आपको पता चले। बहुत प्यारी बहुत फजीलत वाली सूरत का आज हम आगाज करते हैं, और किससे आगाज करेंगे, किस बात से करेंगे? वही बात जो अल्लाह ताला ने हमें ताकीद फरमाई है कि फ़ाइदा क़राअतल कुरआन, जब भी कुरान की क़िरात करो, तिलावत करो, पढ़ो, फस्तायद बिल्लाह, तो अल्लाह की पनाह में आ जाए करो, मिन शैतान रजीम, शैतान मरदूद से। तो आऊज़ु बिल्लाह मिन शैतान रजीम के साथ हम आगाज़ करते हैं। आज हम इंशाअल्लाह ताला इस सूरत की पहली 3 आयात का मुताला करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले अऊज़ु बिल्ला को देख लेते हैं। हर हर वर्ड का मैं आपको मीनिंग बताऊंगी, आप ऊपर लिखें वर्ड एनालिसिस और उसके बाद एक एक लफ्ज़ को अलग अलग लिखें। इनमें मैं आपको रूट वर्ड भी बताऊंगी। रूट वर्ड क्या चीज़ होती है? रूट किसको कहते हैं? मादे को, किसी की जड़। तो किसी लफ्ज का जो असल हरूफ है, जो असली हरूफ है, उसका जो रूट है, उसका मादा है जिससे वो लफ्ज निकला है, ओरिजिनल लेटर्स ऑफ अ वर्ड, उसको कहते हैं रूट। जैसे मसलन मालूम, आलिम, अलीम, इल्म, यालमून, इन सब में एक चीज कॉमन है, वो इसके कुछ लेटर्स हैं। कौन से लेटर्स हैं? मालूम में, अलीम में, यालमून में, तालमून में, आलिम में, ऐन लाम मीम, है ना? ऐन लाम मीम इन सब में कॉमन है। इसका मतलब ऐन लाम मीम जो इल्म था ना, वो जड़ थी, वो बुनियाद थी, वो रूट था, और इस रूट से आगे फिर ये सारे अल्फाज लिखे निकले, कहीं अलीम निकला, कहीं आलिम निकला, कहीं मालूम निकला, कहीं यालमून निकला, कहीं तालमून निकला। लेकिन अगर मैं कहूँ तामलून, तामलून कहूँ, तो क्या वो इसी से निकला? नहीं, वो इससे नहीं निकला। इसलिए क्योंकि याद रखिए, जो रूट होगा उससे निकलने वाले जितने अल्फाज होंगे उनमें लेटर्स इसी सीक्वेंस में, इसी तरतीब में आएंगे जिसमें रूट है। जैसे इसमें तरतीब क्या है, पहले आइन आया, फिर लाम आया, फिर मीम आया। ठीक है, तो मालूम में भी पहले आइन आया, फिर लाम आया, फिर मीम आया। जो बाद के वाओ है या एक और मीम है, ये तो एक इजाफी एक्स्ट्रा लेटर्स है ना। लेकिन जो रूट है उसके जो लेटर्स हैं उनकी तरतीब सेम रहेगी। या आलमून में भी देख लें, पहले आइन आया, फिर लाम आया, फिर मीम आया, बीच में से देखें। तालमून में भी यही है। अलीम में भी क्या है, पहले आइन फिर लाम, या तो बीच में एक्स्ट्रा फिर मीम। यानी कभी ऐसे नहीं होगा कि लाम पहले आ जाए, आइन बाद में आ जाए, या मीम पहले आ जाए। जैसे या मलून में क्या है, या मलून में अमल से है वो, आइन फिर उसके बाद मीम फिर उसके बाद लाम, इसका मतलब वो कोई और वर्ड है, वो इसमें से नहीं है। तो आपको जब रूट्स पता चल जाते हैं और रूट का मीनिंग आ जाता है ना, तो उसमें से निकलने वाले वर्ड का ताल्लुक इसी कुछ मतलब से होगा। इल्म से अब देखिए सारे निकले हैं, तो इल्म से ही फिर उसका जो सारे माने होंगे जो आगे आ रहे हैं, अलीम हो, मालूम हो, या लमून हो, तालमून हो, सब का कुछ ना कुछ रिलेशनशिप इल्म के साथ ही है। ठीक है, जैसे रहम है, रहीम है, राहमीम से निकला ये, तो राहमीम का मतलब क्या कि अब रहीम हो या राहिम हो या रहमान हो, तो ये सारे, या रहमून हो, ये सारे अल्फाज जो हैं वो इसी एक से निकलेंगे। ठीक है, इसी एक से, यानी इसी रूट से। तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला रूट वर्ड्स बताती रहूंगी, तो फिर आप लिखते रहिएगा। तऊदु बिल्लाही, आऊदु बिल्लाही क्या है, मैं पनाह मांगती हूँ बिल्लाही अल्लाह की। बी एक हर्फ है लेकिन इसके भी माने हैं। अरबी में तमाम जो भी लेटर्स भी हैं, कुछ उनमें से लेटर्स के माने भी बनते हैं। कोई और लैंग्वेज ऐसी नहीं है जिसमें लेटर का भी माना हो, सिर्फ एक लेटर है बी, इसका भी माना है। तो आऊदू, मैं पनाह मांगती हूँ, तावुज़ मांगी गई। तावुज़ क्या होता है, यानी आउजू क्या मतलब है कि किसी के पास जाके इंसान पनाह ले ले किसी चीज के शर से, किसी से बचने के लिए, किसी हस्ती की पनाह ले ले, वो है आउज, मैं पनाह मांगती हूँ। बिल्लाही, बी साथ यानी से अल्लाह की, मिन से अशैतान, अशैतान का रूट क्या है, शीन तो नून। अच्छा, एक वर्ड के दो रूट भी हो सकते हैं, दो दो रूट से भी कोई एक वर्ड निकला हो सकता है, कि इस रूट से भी निकलता है, किसी और रूट से भी निकलता है। तो पहले इससे देख लेते हैं, शीन तो नून, देखिए सीक्वेंस वही आ रहा है ना, पहले शीन है फिर तो है फिर नून है। शातना कहते हैं जो दूर हो जाए, तो शैतान भी क्या है, अल्लाह की रहमत से दूर हो गया ना। या फिर हम इसका दूसरा रूप देख लेते हैं, शीन या तो, शीन या तो देख लें, शीन और या और तो आ रहे हैं ना, इससे भी ये, इस रूट से भी ये लफ्ज शैतान का निकला है या निकल सकता है। अगर हम शीन या तो से लें, अगर हम ये कहें कि इस रूट से ये लफ्ज निकला है, तो इसका मतलब, इस शहीद का मतलब क्या होता है, हलाक होना। तो वो अल्लाह के कहर और उसके गलत गजब में हलाक हो गया ना शैतान जो है। तो मीना शैतान रजीम, अर रजीम, रजीम क्या है, इसका रूट क्या है, रॉ जीम मीम। ये लेटर्स अलग अलग आप लिखेंगे, जो रूट के लेटर्स है ना, रा अलग लिखें, जीम अलग लिखें, मीम अलग लिखें। रजम सुना होगा आपने, रजम करना, संसार करना, कत्ल करना, इसी तरह इसका माना लानत करना, धुतकारना भी होता है। तो अल्लाह ताला ने इस पर लानत की थी ना, इसको धुतकारा था, इसलिए इसको रजीम कहते हैं। तो मैं किस से अल्लाह की पनाह ले रही हूँ, शैतान रजीम से। शैतान ऐसा है जो के लानत जदा है, धुतकारा हुआ है, अल्लाह की रहमत से दूर है, उससे मैं अल्लाह की पनाह में आ रही हूँ। बी बिस्मिल्लाह का बी जो है, अब आप देखें सुभान अल्लाह, एक बात आपको बताती चलूं कि ये इल्म जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं ना, ये इतना डीप है, इतनी इसमें डेप्थ है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि सूरह फातिहा की तफसीर करूं तो 70 ऊंटों पर लादी जाए, 70 ऊंटों पे लादी जाए, इतनी है इसकी तफसीर। तो ईशा की नमाज पढ़ के बैठे थे और बिस्मिल्लाह की बी पे बात शुरू की उन्होंने, तो फजर की अजान हो गई और बी पे बात खत्म नहीं हुई, सिर्फ बी को ही समझाते हुए, इसी की तफसीर करते हुए। सुभान अल्लाह, कि सोचने इसकी डेप्थ। तो बी साथ, और ये बिस्मिल्लाह आपको नजर आ रहा है ना, असल में ये क्या है, बी और इस्म साथ मिले हैं। बी अलग लिखे, बा के नीचे जेर लगा के प्लस लिखे, प्लस का साइन लगाए और इसम लिखे। बी का मतलब साथ, और इसम आपको पता है उर्दू में बोलते हैं नाम, अल्लाह ही, अल्लाह के। अर रहमान, अर रहमान में रूट देखें क्या है, रा हा मीम, रहम, बहुत ज्यादा रहम करने वाला, बहुत ज्यादा मेहरबान। अर रहीम फिर वही है, रा हा मीम, ये भी जाहिर है उसी रूट से निकला। तो अब हम अलग करने के लिए बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला, इस तरह से लिख तो देते हैं, लेकिन दोनों में रहम का ही मादा है, रहम का ही रूट, एक ही रूट है जिससे निकलेंगे, दोनों में रहम के ही माने हैं, ठीक है। लेकिन क्या फर्क है दोनों में, वो इंशाल्लाह हम तफसीर में देख लेंगे। तो रहीम में क्या है, रा हा मीम, वो भी रहम से ही है। अलहमदु, अल अलिफ लाम अलग कर दें और हमदु अलग कर दें। अलिफ लाम यहाँ पे बता रहा है, प्रॉपर नाउन के लिए भी आता है, और अलिफ लाम यहाँ पे क्या बता रहा है, तमाम की तमाम हमद। अब हम तर्जुमे में तो लिख लेते हैं तारीफ, लेकिन तारीफ इसका पूरा माना नहीं है। आप हमद को लिखे, हमद इज इक्वल टू तारीफ प्लस, प्लस का साइन लगाएं, शुक्र, तारीफ प्लस शुक्र, ठीक है। फिर हम तफसीर में देखेंगे कि क्या इसका माना बनता है, फिलहाल आप ये लिख लें। ली लिए, ली जब जहां पे आता है ना उसका माना होता है लिए, तो ली और लिए काफी सिमिलर है ना बोलने में, तो आप इससे याद रखिएगा, ली आएगा तो लिए का माना आएगा। अब ली प्लस अल्लाह लिखें, ये भी मर्ज हो गया ना, लिल्लाह बन गया, ली अल्लाह था तो दोनों एक साथ जुड़ गए, तो क्या बना, लिल्लाह, तो ली प्लस लिखे अल्लाह इज इक्वल टू लिल्लाह, तो ली लिए प्लस अल्लाह इज इक्वल टू अल्लाह के लिए, ठीक है। आप इस तरह तोड़ तोड़ के इंशाल्लाह ताला अल्फाज को समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। रब्बी रब, इंग्लिश में इसका माना लिख देते हैं लॉर्ड, लेकिन असल में मास्टर का माना हम कह सकते हैं, मास्टर। अल आलमीन, आलमीन इससे आइन लाम मीम से, इल्म भी इसी से है, आलम भी इसी से, आलम आप कहते हैं ना, आलम बुलंद कर दिया, उसका झंडा बुलंद कर दिया, तो झंडा क्या होता है, किसी जगह की कोई निशानी होता है ना, तो निशानी के लिए, तो आलमीन क्या है, जब हम कहते हैं जहानों की, आलम हम कहते हैं ना, एक आलम है, ये भी एक आलम है, एक जहान है, तो आलम इटसेल्फ ही एक में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, इटसेल्फ ही एक जमा है ना, नहीं उसके अंदर तो कितनी चीजें आ गई, एक आलम कहते हैं, आप कहते हैं इंसानों का एक आलम है, जानवरों का एक आलम है, तो उसमें कितने सारे जानवर आ गए, तो ऑलरेडी जमा है, लेकिन यहाँ पे और उसकी जमा आ गई, या नून याद रखें एंड में आएगा, तो ये जमा के लिए होता है, प्लूरल के लिए होता है। तो यानी मैंने आपको बताया निशानी। अच्छा, अब अल्लाह ताला की निशानियां हैं, जितनी भी कायनात में ये बिखरी नहीं, अल्लाह की निशानियां, क्योंकि इनको देख के हम अल्लाह ताला को पहचानते हैं। जैसे आपको कोई अपनी कोई निशानी देता है, मसलन कोई अंगूठी दे दी का, ये मेरी निशानी है आपके पास, जब जब अंगूठी को देखेंगे आपको वो बंदा याद आएगा ना, तो ये निशानियां है सारी जो कायनात में अल्लाह की मखलूक है ना, ये सारी उसकी निशानी है, ये बिखरी पड़ी है उसकी निशानी, इनसे हम उस रब को पहचानते हैं, उस रब की याद आती है। ठीक है, तो आलमीन जमा आलम की, अल्लाह के सिवा तमाम मखलूक को आलम कहते हैं। तो लफ्ज आलिम भी जमा है, इसीलिए इसका वाहिद कोई है ही नहीं है, और इसकी और जमा कर ली, सारी मखलूक इसमें आ गई ना। और ये भी बाज का कौल है कि इससे मुराद कौन है, इंसान, जिन्नात और फरिश्ते। अर रहमान अर रहीम, ये तो अभी मैंने आपको बता दिया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मालिकी मालिक है, हम उर्दू में भी बोलते हैं ना मालिक, तुम इस जमीन का मालिक, इस घर का मालिक, इस जगह का, तो मालिक, मालिकी मालिक, जिसकी कोई मिल्कियत होती है, वो मालिक कौन, कैसा मालिक है, यौमी, यौम की का, यौम का यानी यौम हम कहते हैं यौमुल जुमा, जैसे हम कहते हैं दिन का, अद्दीन, दीन किससे है, इसका भी रूट दाल या नून, इसका माना होता है जजा और बदला, ठीक है, जजा और बदला इसका माना होता है, इंशाअल्लाह वो ताला हम तफसीर में देख लेंगे कि क्या इसका फिर माना दीन का कैसे बनता है, आगे जाके इंशाअल्लाह देख लेंगे। तो यहाँ तक आप लिखेंगे अल्फाज माने, और उम्मीद है कि आपको मुश्किल नहीं लगा होगा, क्योंकि ये सारे वर्ड हम्द भी हम उर्दू में बोलते हैं, रब भी हम उर्दू में बोलते हैं, आलम भी हम उर्दू में बोलते हैं, रहमान और रहीम भी हम बोलते हैं, मालिक भी बोलते हैं, यौम भी बोलते हैं, दीन का लफ्ज़ शायद हो सकता है आपके लिए एक नया लफ्ज़ हो, लेकिन अदरवाइज ये सारे ही अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी उर्दू ज़ुबान में भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा लफ्ज़ी तर्जुमा मुकम्मल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह।